दिन भर 22 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 में से 3 जजों ने बताया असंवैधानिक।
उसमें उन्होंने ये तो जरूर कहा कि मैंने कुरान शरीफ की एक के बाद एक आयत कोट की है अपने जजमेंट में और ये तय पाया है कि ये अनकुरानिक।
देखेंगे फैसले पर क्या राय है मुसलमान महिलाओं की।
हमारा जो पुराना है वही बेहतर है, वो जैसा भी है हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे पैगंबर जो कह गए हैं, हम उसी पे एग्री हैं।
और ये भी देखेंगे कि खाने की गुणवत्ता क्या है भारतीय रेलों में।
इनका मॉनिटरिंग संभव ही नहीं है, कितने कम वर्कर में इतनी सारी ट्रेन है, एक ट्रेन के पीछे भी एक वर्कर नहीं पड़ता।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में तुरंत 3 तलाक देने की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने इसे भेदभाव और समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। इस प्रथा पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह भी कहा कि इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर प्रतिबंध लागू है तो क्या स्वतंत्र भारत इससे मुक्ति नहीं पा सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं में से एक के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा,
टिल एस्टरडे अ मुस्लिम वुमन कुड बी थ्रोन आउट ऑफ हर हाउस ऑन अ वेरी आर्बिट्री।
कल तक एक मुस्लिम महिला को बड़े ही मनमाने तरीके से उसके घर से बाहर निकाला जा सकता था और उसे उसकी कोई वजह भी नहीं बताई जाती थी। लेकिन आज से तलाक चाह रहे किसी भी मुस्लिम पुरुष को कुरान के हुक्मों का पालन करना होगा, ये एक बड़ी बात है। ये थे वकील बालाजी श्रीनिवासन के शब्द। इराकी सेना ने कहा है कि वो तल अफार शहर के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गए हैं। यह शहर इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले बचे खुचे इलाकों में से है। इराकी सेना और उसके सहयोगी बलों ने इस बड़े हमले का यह 3रा दिन है। उन्होंने शहर के पूर्वी और दक्षिणी किनारों से प्रवेश करने से पहले कुछ सीमांत गाँवों को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना ने मूसल पर कब्जा करने के बाद जुलाई में इस्लामिक स्टेट के गढ़ तल अफार को अपने निशाने पर लिया था। मूसल से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित शिया बहुल ये शहर साल 2014 में कथित इस्लामिक स्टेट के हाथों में चला गया था। अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश में तालिबान से लड़ने के लिए और सैन्य सहायता भेजने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत किया है। गनी के शब्दों में आतंकवाद के खतरे के खिलाफ साझा संघर्ष में समर्थन के लिए उन्होंने अमरीकी लोगों को धन्यवाद दिया। इससे पहले अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी के अपने चुनावी वादे से पलटते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वापसी से एक खाली जगह बनेगी जिसे तुरंत चरमपंथी भर लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अफगानिस्तान का राष्ट्र निर्माण नहीं बल्कि उनके शब्दों में आतंकियों को मारना है। इसके जवाब में तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान अमरीका की कब्रगाह बन जाएगा। ट्रंप के बयान का स्वागत करते हुए अफगान नेता अशरफ गनी ने कंधार में कहा, आज खास दिन है क्योंकि कुछ घंटे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, आप सबने वो भाषण सुना होगा। उनका संदेश ये था कि इसके बाद अफगानिस्तान को उनके समर्थन का कोई सीमित समय या शर्त नहीं होगी, अमरीका आखिर तक अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ये थे अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हरम के चरमपंथियों की ओर से बच्चों का मानव बम के तौर पर इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है। उनके मुताबिक इस साल अब तक 83 बच्चों को इसके लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 4 गुना है। इनमें ज़्यादातर 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ थीं। स्पेन के बार्सिलोना में पिछले हफ्ते हुए हमले के संबंध में 4 संदिग्ध चरमपंथियों को अदालत में पेश किया गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। सभी आरोपी उत्तर अफ्रीकी मूल के हैं। इनमें से एक 22 वर्षीय मोहम्मद होली चैमलल को जब अस्पताल में लाया गया तो उन्होंने अस्पताल का पायजामा पहना हुआ था। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वह पिछले बुधवार को बम फैक्ट्री में हुए उस धमाके में घायल हो गए थे जिसका शक इन्हीं संदिग्धों पर है। इस धमाके में उनके 2 सहयोगियों की भी मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुसलमानों में एक बार में तीन बार तलाक बोलकर दिए जाने की प्रथा अमान्य, अवैध और असंवैधानिक है। शीर्ष अदालत ने 3-2 के मत से सुनाए गए फैसले में इस तीन तलाक को कुरान के मूल तत्व के खिलाफ बताया है। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
उदय ललित को इत्तेफाक है और इन 30 फैसलों के तहत ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का मुकदमा बहुत अहम था, जिसका इंतजार शायद पूरे मुल्क को था। 5 जजों की बेंच ने मुस्लिम महिलाओं को एक ही बार में 3 तलाक कहकर तलाक देने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया। मुकदमे के एक वकील सैफ महमूद ने कहा,
3 अलग अलग फैसले सुनाए गए, उसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मेजॉरिटी वाला सुनाया। उसमें उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि मैंने कुरान शरीफ की एक के बाद एक आयत कोट की है अपने जजमेंट में और ये तय पाया है कि ये अनकुरानिक है, और जो चीज़ अनकुरानिक हो वो अन इस्लामिक तो होगी ही। वो कैसे एसेंशियल पार्ट हो सकती है इस्लाम का? क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, इसलिए उसको आर्टिकल 25 का कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है और इसलिए हम उसको सेट असाइड कर रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले में इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी है और इसलिए हम सेट असाइड कर रहे हैं, तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बेसिस पर ही सेट असाइड किया है उसको उन्होंने। इसलिए 3 जजेस की मेजॉरिटी से इसको आज से ही गैर आईनी डिक्लेयर करके सेट असाइड कर।
भारत के मुस्लिम समाज के कई तबकों में 3 तलाक का चलन आम है। महिलाओं को इस तरह से दिए गए तलाक के खिलाफ किसी तरह का कानूनी संरक्षण भी हासिल नहीं था। अतिया साबरी इस मुकदमे में याचिका करता थी।
शरीयत में ये होता है कि जैसे आप निकाह कर रहे हैं, शादी होती है, तो दोनों की सलाह मशवरा से होती है, दोनों की रजामंदी से होती है। तो ऐसे ही जब डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो आप कैसे एक तरफा तलाक देकर छुट्टी हो जाते हैं।
मुस्लिम महिला संगठनों ने एक अरसे से 3 तलाक की पद्धति के खिलाफ आंदोलन चला रखा था। महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम समाज के लिए ऐतिहासिक करार दिया। भारतीय महिला आंदोलन की ज़किया सुमन कहती हैं कि ये फैसला उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो खुद को मजहब का ठेकेदार समझते हैं।
अब मजहबी तंजीमें ये समझ लें कि देश का आम मुसलमान, औरत और मर्द दोनों जाग उठाए, देश का आम मुसलमान इनकी हरकतों की वजह से जो बदनामी हो रही है उसका अंत चाहता है। तो मजहबी जो पितृसत्ता भरी तंजीमें हैं उनको चाहिए कि इस बात को समझ ले। ये फैसला मुस्लिम समाज में रिफॉर्म और एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन की ओर एक पहला कदम साबित होगा।
उच्चतम न्यायालय ने मशवरा दिया है कि संसद इस सिलसिले में मुसलमानों के लिए कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की वकील डॉक्टर चंद्रा राजन बताती हैं कि मुसलमानों के लिए कानून की जरूरत क्यों है।
इसलिए कि क्योंकि कानून ही नहीं है। मुस्लिम मैरिज एक्ट है कहाँ? जो भी हमारे मुस्लिम एक्ट्स आज तक बने हुए हैं वो बिट्स एंड पार्ट्स में बने हुए हैं। कोई मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है, डाइवोर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, कोई शरिया एक्ट है। मुस्लिम मैरिज एक्ट है ही नहीं, जिसमें कि सारी चीज़ें कंबाइन होकर के और एक तरीके से जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, हर एस्पेक्ट को एड्रेस करते हुए कोई एक्ट बनना चाहिए, वैसा एक्ट है ही नहीं।
मुसलमानों की शादी ब्याह के मामले में सरकारें अभी तक दखल देने से बचती रही हैं, लेकिन अदालत के आज के फैसले के बाद मुल्क के मुसलमानों के लिए नए कानून बनाने का संसद का रास्ता खुल गया है।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रिपल तलाक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देकर और सशक्त बनाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसे नए युग की शुरुआत बताया है। उधर ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ किछोशवी ने कहा है कि 3 तलाक पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार मनमाना कानून थोपने की कोशिश न करे। मुसलमान पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील शमशाद अहमद से संपर्क किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनकी राय मांगी।
सबसे पहली बात मैं करेक्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जो 3 जजों ने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक कमिंग इनटू इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली, वो 3 जजों में 2 जजों ने ये कहा है कि ये असंवैधानिक है। तीसरे जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है, जो इसके फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, वो खुद मानते हैं कि ये गलत प्रैक्टिस है और कुरान शरीफ में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये गलत है। और इस तरह से 3 जजों ने اس پر ایک ویو لیا ہے کہ یہ ایک غلط پرتھا ہے اور اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے. تو اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسمویدھانک ہے. ہاں, کورٹ کی میجورٹی بینچ نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط پریکٹس ہے اور اس کو ختم کر دیا.
آواز یہ بھی اٹھی تھی کہ اگر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ لیتا ہے تو یہ مسلمانوں کے معاملے میں دخل ہوگا.
مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ پریکٹس سنفل پریکٹس نہیں ہے. مسلمانوں کے ہر طبقے نے سپریم کورٹ کو یہ کہا تھا کہ تین طلاق ایک وقت دینا ایک گناہ ہے, ایک سنفل پریکٹس ہے. جب کمیونٹی خود اس بات کو مان رہی ہے کہ سنفل پریکٹس ہے, تو اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ نے اگر ایک فیصلہ دیا ہے تو میرے حساب سے اس میں کمیونٹی کو اس کو ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو میں لینا چاہیے.
اور جو اس کا ورودھ کر رہے ہیں لوگ, خاص کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بات آئی ہے کہ وہ پنروچار یاچکا بھی دائر کر سکتے ہیں, ایسا خبروں میں آ رہا ہے, اس نظریے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, ورودھ کرنا تو سبھوں کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور پنروچار یاچکا داخل کرنا ایک سپریم کورٹ کے پریکٹس پروسیجر کا حصہ ہے, وہ بھی ود ان دی پریکٹس ہے, تو وہ تو ہمیشہ ہو ہی سکتا ہے, اس کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. لیکن چونکہ جو ججمنٹ ابھی ہے, اس ججمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کافی بیلنسنگ ججمنٹ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات اس ججمنٹ میں یہ ہوئی ہے کہ تین ججوں کی میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ جو پرسنل لاز ہیں اس کو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے, جو یہ بات آئی تھی کہ اور جو ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ اتنا آسان طلاق کا طریقہ نہیں ہے, تو مسلم وومن کو بھی اسی طرح سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا چاہیے, ایکول بنا دینا چاہیے. اس کو تین ججوں کی میجورٹی بینچ نے یہ کہا ہے کہ یہ پرنسپل آف ایکویلٹی پرسنل لا کے معاملات جو مسلمانوں کے ہیں اس میں نہیں لائے جا سکتے.
لیکن اب جو یہ ترنت تین طلاق پر روک لگ گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یدی کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق 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 کہتا ہے تو اس سے شادی نہیں ٹوٹے گی. اس میں اب جو مہیلا ہے, جو بیوی ہے, اس کے پاس کیا حق اب نیا اس کو ملے؟
تین طلاق ایک وقت میں دینے سے وہ طلاق نہیں ہوگا. دو اور فارم ہیں طلاق کے, طلاق حسن اور طلاق احسن. ایک طلاق ویسا ہے جو ایک بار اگر آپ نے طلاق کہہ دیا آج, تو ایک مہینے بعد پھر دوسرا طلاق کہہ دیا, پھر ایک مہینہ ویٹ کیا تو تیسرا طلاق اپنے آپ ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ آج آپ نے طلاق دے دیا, تین مہینے تک انتظار کیا, اور اگر کوئی کمپرومائز نہیں ہوا تو تین مہینے کے بعد وہ طلاق اپنے آپ ہو گیا. تو وہ دو طریقے, وہ دو دروازے ابھی بھی کھلے ہیں.
سپریم کورٹ کے فیصلے کی سمیکشا کر رہے تھے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے وکیل شمشاد احمد. آئیے دیکھتے ہیں اس فیصلے پر دوسرے مسلم نیتاؤں اور ادھیتاؤں کا کیا کہنا ہے. ایک بار پھر دلنواز پاشا.
سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق غیر قانونی ہے اور اسے ترنت ختم کیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اسلامک ودوان اور دلی الپسنکھیک آیوگ کے ادھیکش جفر الاسلام کہتے ہیں,
اینٹی اسلام کرنا یہ سب تو درست ہے, لیکن ان کانسٹیٹیوشن کیسے کیا لینا دینا؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق کیسے ہونی چاہیے. تو جو لاز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ایک شریعت ایکٹ 1937 ہے, وہ ان سب چیزوں کو گورن کرتا ہے. تین طلاق کی بات ہے, میں تو پرسنلی اس کے خلاف تو میں بولتا ہی رہا ہوں, میں مستقل بولتا رہا ہوں میں اس کے خلاف. لیکن آخر میں آتے آتے ہمارے جو بڑا بورڈ ہے مسلم پرسنل بورڈ, اس نے بھی مان لیا کہ یہ غلط ہے. اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے لوگوں سے کہیں گے, اور کہنا شروع بھی کر دیا قاضیوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ. تو اس کے بعد ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی, جب جو پارٹی جو سب سے امپورٹنٹ درجہ رکھتی ہے اس میں مسلمانوں کے درمیان, وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, اور ہم اپنے سارے جو 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 نکاح کے قاضی بولتے ہیں, جو جن کو جو کہ نکاح کو سرمنائز کرتے ہیں, ان کو ہم کہیں گے, اور کہنا شروع بھی کر دیا. تو اس کے بعد یہ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, یہ بلا وجہ کی دخل اندازی ہے.
وہیں جماعت علماء ہند کے سچیو نیاز فاروقی کا ماننا ہے کہ اس فیصلے سے عورتوں کی حالت اور نازک ہو گئی ہے. فاروقی کہتے ہیں,
اس کی وجہ سے تو جو مسلمان عورتیں کی صورتحال بہت ہی نازک ہو گئی ہے, اس معنی کر کے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ طلاق جو ہے ان کا نہیں ہوا, اور شریعت کہتی ہے کہ طلاق ہو گیا, اور وہ خود بھی مانتی ہیں کہ طلاق ہو گیا. اب وہ لٹکی رہیں گے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, ورنہ ان کے اوپر کیس قائم ہو جائے گا. ایسا ہی دوسرے ملکوں میں ہوا ہے, ایسی صورتحال یہاں بھی پیدا ہونے جا رہی ہے. कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कहते हैं, हस्बैंड ने कहा मैंने तलाक दिया और वाइफ ने कहा कि हमने तलाक को मान भी लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जो तलाक दिया ये वैलिड नहीं है। तो मान लिया औरत ने अगर दूसरी शादी करनी हो तो दूसरी शादी नहीं कर सकेगी। शरीयत में जो ये मकसद है तलाक का कि औरत जो है वो अपनी अपनी पुरानी आजादी उसको हासिल होनी चाहिए और वो दोबारा शादी करना चाहे तो शादी कर सकती हो। इस सूरत में मर्द का तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो मर्द जो है एक से ज्यादा तो शादी कर सकता है तो वो दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन औरत तो नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक से ज्यादा दो शादियां कर नहीं सकती। अगर वो करेगी तो उसके ऊपर एडल्ट्री का केस कायम होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जहां मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने इस्लाम के हक में फैसला बताया है, वहीं ऐसी आवाजें भी हैं जो इसे अल्पसंख्यकों के मजहबी अधिकारों में गैर जरूरी दखल बता रही हैं। अब देखना यह है कि सदियों से चली आ रही मजहबी प्रथा में यह कानूनन दखल औरतों की हालत को बेहतर कर पाता है या नहीं। दिलनवाज पाशा, BBC।
ये तो रही नेताओं और स्कॉलर्स की राय, आइए देखते हैं आम मुसलमान महिलाओं ने इस फैसले को किस तरह से लिया है। इन महिलाओं से बात की समीरात पंत मिश्र ने।
लखनऊ में हम इस समय बालू अड्डा मोहल्ले में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ट्रिपल तलाक, जो तीन तलाक का मुद्दा है, उसको ख़त्म करके सरकार को कानून बनाना चाहिए। इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं। क्या नाम है आपका मैडम?
असगरी बेगम।
तो ये सुना है आपने इस फैसले के बारे में, आपको पता है जो आज आया है सुप्रीम कोर्ट का?
जी आज तो हमने नहीं सुना, बाकी हम देखते हैं समाचार।
तो आप इससे इत्तेफाक रखती हैं?
हमारा जो पुराना है वही बेहतर है, वो जैसा भी है हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे पैगंबर जो कह गए हैं, हम उसी पे एग्री हैं। और क्या कोई बैंड लगाता उससे हम सहमत नहीं है। जो कानून है वो कानून है,
यही हो रहा है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि आजकल क्या पता कैसा क्या चल रहा है, उससे हमें देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो है कुछ कानून बनाया जाए मजबूत कि हाँ कुछ जो है मतलब वो औरतों के साथ कोई जाती ना हो, लेकिन जो हमारा पुराना चल रहा है उस पर कुछ नया किया जाए लेकिन उसे खत्म ना किया जाए।
हम लोग नहीं चाहते हैं,
क्या नहीं चाहते,
यही तीन तलाक वाला है खत्म हो जाए, खत्म नहीं होना चाहिए।
नहीं तो इसमें ये भी कहा जाता है कि ये जो है गलत तरीके से दिया जाता है, जो तरीका है वो सही नहीं है, बहुत से मौलाना लोग भी इस बारे में कहते हैं, तो इस पे क्या कहती हैं आप?
वो सही है, तीन महीने में तीन तलाक, तीन साल में तीन तलाक, तीन दिन में तीन तलाक, तीन घंटे में तीन तलाक, वो सहमत है, एक सांस में नहीं कहना है, उसको मौका देना चाहिए। अगर औरत गलत है, वो नहीं रहना चाह रही, उसको मौका दिया जाएगा तो हो सकता है वो एक में सहमत हो जाए, हो सकता है वो दो में सहमत हो जाए, जब रहने ही नहीं चाहती तो तीन के बाद मसला हो जाता है खत्म।
हमारा तलाक जैसे चल रहा है वही हमको पुराना ही चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, बीच में
खेल नहीं बनाना चाहिए। उसकी वजह ढूंढना चाहिए कि किस वजह पे तलाक दी गई। अगर उसका कारण औरत की गलती का है तो कोई बात नहीं, अगर शौहर तलाक दे रहा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी उसका सबक सीख ले।
लेकिन इसको जो है पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहिए, ऐसे नया कोई कानून बनाना चाहिए ताकि जिसको मान लो कोई महिला नहीं रहना चाहती तो ऐसा थोड़ी कि तलाक नहीं होगा तो क्या वो अलग नहीं रहेगी, अगर वो चाहे तो बस उसकी भी सहमति होनी चाहिए।
हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, युवा है, अभी बच्चे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, क्या कर रही हो?
हम ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया।
ग्रेजुएशन कम्प्लीट, क्या नाम है आपका?
गुलनाज अंसारी।
आप बताइए, आपने सुना फैसला, आपको क्या लगता है? आप कॉलेज में लड़कियों से मिलती हो, आपके आसपास क्या बातें होती हैं इसके बारे में?
इसे ख़त्म करना तो नहीं सही है, बस इसके खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी लेना और उनकी हेल्प के लिए जो उनके बच्चे हैं और उनकी बीवी के लिए इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए।
ख़त्म क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें अच्छाई क्या है?
क्योंकि हमारी किताबी बातें उस पर हम लोग इतना वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे अल्लाह का फैसला है वो सभी का फैसला है, किताब में दिया ही हुआ है।
तो ये ग्रेजुएट लड़की है, इनका ये कहना है खत्म नहीं करना चाहिए। माताजी आप क्या कहती हैं, जो ये लड़की कह रही है सही है?
वही सही है, हम खुदा और रसूल से बाहर नहीं जा सकते, हम उसी में रहेंगे जो हमको बताया गया है।
लेकिन ये बताइए एक चीज़ और है इसी से मिल करके, बहुत सी महिलाएँ भी हैं मुस्लिम महिलाएँ जो कि इसके लिए बहुत दिन से काम कर रही हैं, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाली थी कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो लोग किस बिना पे इसको ख़त्म करने की बात कर रही हैं?
वो क्योंकि वो तालीम उनको पूरी तरह मिली नहीं होगी किताबों की, कुरान की, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया, ना तो वो भी नहीं कदम उठाती है।
अगर लेडीज़ की गलती है लेडीज़ को सजा दें, जेंट्स की गलती है तो जेंट्स को सजा दें।
पहले शादी कर ले रहे हैं तो इस पे कोई कानून नहीं, एक बीबी जब तक के है जब तक के दूसरी शादी ना करे, जब तक पूरी तरह सहमत ना हो कि हाँ तुम शादी कर लो। उससे ज्यादा ठीक से ना ले लें। यहाँ जो है बीबी घर में है, बाहर जा करके कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं और ले आ रहे हैं, उसमें क्या किया जाए?
इसमें एक्शन ले जो लेने वाली चीज है।
तो ये महिलाएं यहाँ पे सब तरह की महिलाएं हैं, छात्राएं भी हैं कई, इन सभी लोगों का ये कहना है कि इस पर सुधार होना चाहिए। सुधार की गुंजाइश हर चीज में रहती है, लेकिन जो पूर्वज कह गए हैं, जो किताबी चीजें हैं, उनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। बिहार में बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है, उनकी पूरी मेहनत पर पानी बह रहा है। राज्य के कई इलाकों में हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है, इस कारण उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी, रामगढ़वा और रक्सौल में ऐसे ही कुछ किसानों से बात की हमारे सहयोगी रवि प्रकाश ने।
पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड का एक गांव है गमरिया आनंद सागर। लोकरिया पंचायत के इस गांव में पानी ने खूब तबाही मचाई है, तमाम लोगों की फसल इस पानी में डूब चुकी है। इन लोगों ने बड़ी जतन के साथ धान की रोपनी की थी, पौधे अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि 15 अगस्त की रात यहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। इस पानी ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। मोतिहारी प्रखंड के हरकैना गांव के किसानों को भी यही हालत है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस इलाके के तमाम गाँवों में धान की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। हरकैना के सरयू राम इससे खासे चिंतित है, उन्होंने BBC को बताया।
पानी सर अचानक आया, 16 तारीख का रात में पानी का अचानक यहाँ पहुँच गया, बहुत तबाही पहुँच गया है यहाँ।
ये जो फसल उसल बा, जो धान हुई,
सब गायब हो गया। फसल होने यहाँ नहीं होगा, न ऊख होगा आना धान होगा, सारा फसल पिटा गया।
फसल का बीमा उमा हुआ है?
कुछ भी नहीं देते हैं, फसल का बीमा गरीब को कहीं नहीं मिला है आज तक।
पूर्वी चंपारण केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का इलाका है, वे मोतिहारी के सांसद हैं। इसके बावजूद इस जिले में अधिकतर किसानों की फसल का बीमा नहीं हुआ है। रामगढ़वा पंचायत के चन्नू महतो ने कर्ज लेकर धान की खेती की थी, अब उनके चेहरे पर उदासी है और उनके खेत में कमर भर पानी। उन्हें यह पता भी नहीं कि फसल का बीमा भी कराया जाता है। चन्नू महतो ने BBC से कहा।
नहीं सर, नहीं नहीं, हमारे पास ना खेत है वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ गांव में नहीं है कि क्या, हमारे पास तो जो मड़ई था वो दह गया।
मोतिहारी से रक्सौल आने के रास्ते में मैंने सिमरा, छपवा, रामगढ़वा और सुगौली में दूर दूर तक सैलाब का विचलित कर देने वाला नज़ारा देखा। गहरे पानी में धान की फसल पूरी तरह डूब कर बह गई थी, वहीं पानी के बीच खड़ी ईंख की फसल इस बात की गवाही दे रही थी कि पानी हटने के बाद उसकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। हरे रंग की ईंख का निचला हिस्सा पानी में था तो बीच वाले हिस्से पर सफ़ेदी थी। दरअसल यह सफ़ेदी इस बात का बयान है कि बाढ़ का पानी उस ऊंचाई तक था, अब पानी घटा है। बहरहाल पूर्वी चंपारण जिले के किसान तो सिर्फ एक पात्र हैं, यह हालत बिहार के बाढ़ प्रभावित सभी जिलों की है। राज्य में हजारों चन्नू महतो हैं जिनकी फसल बर्बाद हो गई और इसका बीमा भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह फसल के नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मुआवजे का भुगतान कराए, भले ही उनकी फसल बीमित रही हो या नहीं, क्योंकि अगर फसल बीमा योजना का समुचित प्रचार नहीं हो सका तो इसकी कसूरवार भी सरकार ही है। रवि प्रकाश, BBC के लिए रक्सौल में।
हाल ही में संसद में पेश हुई CAG की रिपोर्ट में ट्रेन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और यात्रियों से ली जाने वाली रकम पर सवाल उठाए गए हैं। हकीकत की परख के लिए BBC संवाददाता सलमान रवि ने एक लंबी ट्रेन यात्रा की, सुनिए उनकी खास सीरीज की दूसरी रिपोर्ट।
रेलवे स्टेशन की अपनी एक अलग रौनक होती है, चाहे दिन हो या फिर रात, हमेशा चहल पहल बनी रहती है। मुझे भी बचपन के वो दिन भी याद हैं जब लंबी ट्रेन यात्रा शुरू करने से पहले घर से ही खाने का इंतजाम करके चलना पड़ता था। लंबा सफर हो तो इंतजाम कई दिनों का। भारतीय रेल का विकास हुआ और सुविधाओं का भी। आहिस्ता आहिस्ता खाना सप्लाई करने की व्यवस्था निजी हाथों में चली गई। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC का भी गठन हुआ, जिसकी देखरेख में खाने की सप्लाई की व्यवस्था काम करने लगी। हाल ही में संसद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय रेल में यात्रियों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं, सवाल तो खाने के एवज में पेंट्री के लोगों द्वारा यात्रियों से वसूली गई रकम पर भी उठाए गए।
शिकार करो, 55 रुपया का जगह पे कितना रुपया लिया है तुम?
55 रुपया का छुट्टी।
क्यों लिया?
छुट्टी लड़का लिया, मैं थोड़ी।
ये हंगामा किसी ट्रेन में हो रहा है जहाँ पेंट्री वाले निर्धारित रकम से ज्यादा पैसे वसूल रहे थे।
ग्रेवी बताओ और क्या क्या ग्रेवी मिलेगी? अभी 125 वाले का तो बताओ, 125 में क्या क्या आएगा
बता दो सर जी आपको। जो 125 नहीं, 120 आएगा, उसमें जो ये 16 रुपए 2 पीस पराठे हैं, हम लोग इसमें 3 पीस पराठे देते हैं, उसको जोड़ के 120, उसके साथ भी वाटर गिलास आएगा।
अच्छा,
ठीक है, इसमें मिला के 120 रुपए।
हालांकि रेलवे की तरफ से ट्रेन में बिकने वाली हर खाद्य सामग्री का शुल्क निर्धारित किया गया है। CAG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कई ट्रेनों में इस निर्धारित रकम से ज्यादा वसूला जा रहा है।
80 रुपए में क्या दे रहे हो?
80 रुपए में सब्जी चपाती।
कितनी चपाती है?
4।
तो 4 रोटी और सब्जी क्या है?
CAG की रिपोर्ट के आलोक में मैंने भी ट्रेन का एक लंबा सफर तय किया।
ऑर्डर लेने जाते उसी हिसाब से सर बनता है, चाप रहता है 20-25 को, उस हिसाब से लेके बनाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा लग गया तो स्टाफ का बाद में खाना बन जाता है।
जैसे मान लीजिए बढ़ गया, क्योंकि आप फिर रस्ते से खरीदते हैं फिर आप?
नहीं नहीं सर, सामान हम लेके चलते हैं। अच्छा। और बाकी जो भेज सब्जी है वो रास्ते से आ जाता है।
ट्रेन की पेंट्री के मैनेजर राकेश यादव उन अनाधिकृत वेंडरों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये अनऑथराइज्ड वेंडर ये चढ़ते कहाँ से हैं?
ये सर हर जगह, यहाँ बरौनी से भी चढ़ गए हैं, आगे बेगूसराय।
गवर्नमेंट इस पर कोई काबू नहीं कर पा रही है। पेंट्री कार को मजबूरन बैठने पड़ जाता है। ऐसा कहीं जगह है कि जो पेंट्री कार को बोला जाता है कि तुम रखो, मेरे एरिया में नहीं बेचो, NGP के बाद मेरा सर्विस बंद हो जाता है।
हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा है कि उन्होंने CAG की रिपोर्ट के बाद व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के कई उपाय किए हैं, मगर IRCTC की कर्मचारी यूनियन के सुरजीत शामल ने BBC से बात करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता की निगरानी अच्छी तरह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कर्मचारी ही नहीं है।
पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके पास 4000 वर्कर हैं, जिसमें इनके अपने जो वर्कर हैं 1400 के आसपास, बाकी जो 2500 बचते हैं वो आउटसोर्स करके रखा हुआ, आउटसोर्स दिखाया लेकिन है ही नहीं के वर्कर, है ना, उसकी लड़ाई अभी चल रही है ना। तो उसमें क्या है, अभी अगर हम उसी डाटा को देखें तो इनके पास 2000 वर्कर बचते हैं, मतलब 1400 इनके और 500 वो, है ना। तो मतलब इन्होंने, इनके पास काम जब आया तो वर्कर बढ़ने चाहिए, वर्कर जो है इन्होंने कम किया, तो वर्कर कम किया इसका मतलब इनका मॉनिटरिंग संभव ही नहीं है। इतने कम वर्कर में इतनी सारी ट्रेन है, एक ट्रेन के पीछे भी एक वर्कर नहीं पड़ता।
रेलवे के अधिकारी JP तिवारी से मेरी मुलाकात तब हुई जब वो ट्रेन में यात्रा करने वालों से खाना और दूसरी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने पहुंचे।
ये फीडबैक फॉर्म हमारे ऑफिस में जमा हो जाता है
जी,
इसको कंप्यूटर में चढ़ाते हैं और सीधा दिल्ली भेज देते हैं। खाने की क्वालिटी जानते हैं
जी,
जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद पैसा कितना लिया, कौन कौन सा आइटम दिया, पानी कितने का दिया, ठीक है, चाय कितने का दिया।
हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही जिनके बारे में शिकायतें पहुंची हैं, मगर जानकार कहते हैं कि रेलवे में ठेकेदारों की एक ऐसी मोनोपोली है जिसकी वजह से कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें पूरे भारत की 70% ट्रेनों में खाना सप्लाई करने का ठेका मिला हुआ है। इन्हें पूरी तरह से हटाने की सूरत में रेलवे के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे ट्रेनों में निर्बाध रूप से खाने की सप्लाई की व्यवस्था की जा सके। तो सवाल उठता है कि क्या खाने के ठेकेदारों के आगे रेल प्रशासन मजबूर है? सलमान रावी, BBC न्यूज जलपाईगुड़ी।
और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में तुरंत 3 तलाक देने की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। इराकी सेना ने कहा है कि वो तल अफार शहर के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गए हैं। ये शहर इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले बचे खुचे इलाकों में है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के बोको हरम के में बोको हरम के चरमपंथियों की ओर से बच्चों का मानव बम के तौर पर इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है। स्पेन के बार्सिलोना में पिछले हफ्ते हुए हमले के संबंध में 4 संदिग्ध चरमपंथियों को अदालत में पेश किया गया। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।